पृष्ठ संख्या 5, भूमिका का आधुनिकता की पृष्ठभूमि। भूत, वर्तमान और भविष्य एक ही काल के मनुष्य द्वारा कल्पित विभाग हैं, जो पृथक पृथक होते हुए भी परस्पर संबद्ध हैं। वर्तमान भूत में प्रतिष्ठित होता है और वह भविष्य को जन्म देता है। नए युग के बीज पुराने युग में विद्यमान रहते हैं और उन्हीं से नया युग जन्म लेता है। कोई भी नया अपने आप में पुराने से पूर्णतया पृथक नहीं होता, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं पुरातन में धसी होती हैं। आधुनिक या आधुनिकता शब्द अनेक अर्थों में प्रचलित है। सामान्यतः कालवाची दृष्टि से यह प्राचीनता से हमारा पार्थक्य ही स्थापित नहीं करता, वरन वर्तमान जीवन का अवबोध भी कराता है। इसका प्रभाव विविधता से भरे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पड़ता है। राजनीति, समाजशास्त्र, धर्म, कला, विज्ञान, दर्शन, स्थापत्य, संगीत, नृत्य आदि। जब हमारी चेतना और हमारे भौतिक संसाधनों में कुछ नयापन आता है, तो वह हमारे जीवन और परिवेश को प्रभावित करता है। तब उसे हम नया या आधुनिक कहते हैं। इस प्रकार आधुनिकता शब्द मूलतः दो अर्थों का द्योतन करता है। एक, मध्यकालीन चेतना से भिन्न नवीन चेतना। दो, इलौकिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय। मध्यकालीन मनुष्य का जीवन जड़ता, अवरोध, तर्कहीन, रूढ़वादिता, आस्था और अंधविश्वास से भरा था, जिसके कारण वह स्थिर और एक रस हो चुका था। किंतु काल के गत्यात्मक चक्र ने धीरे धीरे उसे तोड़कर प्रवाहमान कर दिया। नई चेतन धारा के उफान से प्राचीनता के घाट टूट गए और उनसे प्रत्येक क्षेत्र में नवीन जीवन धारा के स्रोत फूट पड़े। साहित्य और कला से पहली बार मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख का नाता जुड़ा। आस्था और अंधविश्वास के स्थान पर तर्क बुद्धि और प्रत्यक्ष सत्य को स्वीकृति मिली। मनुष्य की चेतना में तर्क और बुद्धि के प्रवेश होते ही उनसे मध्यकालीन अवधारणाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू किया। फलतः प्रत्येक बात को मनमाने ढंग से मान लेने की जगह पर वह उसे तर्क और बुद्धि की कसौटी पर कसने लगा। आधुनिकता का दूसरा अर्थ ही अपने पहले वाले अर्थ से ही जुड़ा हुआ है, जिसके कारण मनुष्य के बौद्धिक जीवन में धर्म और आस्था के घोर प्रभाव की जगह इलौकिक। पृष्ठ संख्या 6, अनास्थावान वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय हुआ, जिसका प्रभाव धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, विज्ञान आदि समस्त पर दिखाई पड़ता है। विज्ञान और खगोल शास्त्र की आधुनिक खोजों ने मनुष्य की इस नवीन चेतना को और भी प्रभावशाली बनाते हुए अपने सत्य अन्वेषणों और वैज्ञानिक प्रयोगों से इसे और भी संपुष्ट कर दिया। नया पैराग्राफ। मनुष्य में वैज्ञानिक चेतना के उदय का सुफल यह हुआ कि उसके चिंतन के केंद्र में अब ईश्वर या ब्रह्म की जगह मनुष्य आ गया और वह साहित्य, कला, दर्शन आदि सभी का केंद्र बिंदु बनता चला गया। शनैः शनैः यात्रा करते हुए मध्यकालीन परिवेश से निकलकर मनुष्य का जीवन आधुनिक युग में पहुंच गया। डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त ने नई कविता ब्रैकेट में प्रथम खंड सैद्धांतिक पक्ष ब्रैकेट बंद के एक लेख इन्वर्टेड कामा आधुनिकता एवं मानवतावादी दृष्टिकोण इन्वर्टेड कामा बंद में लिखा है कि इन्वर्टेड कामा आधुनिकता के प्रश्न पर मैं जितना सोचता हूँ, मुझे लगता है कि मानवतावादी जीवन दृष्टि ही उसका प्रधान और मूल आधार है। इन्वर्टेड कामा बंद। पुनश्च उन्होंने लिखा है इन्वर्टेड कामा, मेरे विचार से आधुनिकता अपने सही अर्थ में उस विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से उपजती है जो व्यक्ति को वास्तविक युगबोध प्रदान करने के साथ ही साथ अधिक दायित्वशील, सक्रिय और मानवीय बनाता है। इन्वर्टेड कामा बंद। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक चेतना के मनुष्य को मध्य युग की जड़ता और संकीर्णता से निकालकर उसके मस्तिष्क और हृदय दोनों का परिष्कार कर आधुनिक जीवन के धरातल पर प्रतिष्ठित कर दिया। नया पैराग्राफ। अब प्रश्न उठता है कि हमारे देश में यह आधुनिकता आई कहाँ से? क्या यहाँ के लोग कभी आधुनिक नहीं थे? पूरब वालों का मानना है कि हमारा समाज बहुत जड़वत था, उसमें परिवर्तन की गुंजाइश लगभग ना के बराबर थी, इसलिए यह आधुनिकता पश्चिम की देन है। यूरोप में 14वीं सदी के मध्य से लेकर 16वीं सदी के मध्य तक ऐसी अनेक नवीन ज्ञानोदय की बातें घटित हुईं, जिससे मनुष्य के सोच विचार और जीवनचर्या में अनेक परिवर्तन हुए। इसे ही पुनर्जागरण या रेनेशा कहा गया। पर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा समाज बिल्कुल चादर तान कर सो नहीं रहा था, उठकर अंगड़ाई ले रहा था। लगभग इसी समय 15वीं 16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के धक्के से गतिशील हो वह भी आबद्ध जड़ता से जागने लगा था। सामंतवाद और पूंजीवाद के विरोध में निम्न जातियां एकजुट होने लगी थीं। उनके भीतर भी आत्मगौरव का बोध जगाने के लिए कई संत पैदा हो चुके थे, जो बने बनाए वर्ण और जाति आधारित ऊंच नीच की सामाजिक व्यवस्था के ताने बाने को अपने प्रखर व्यक्तित्व से चूर चूर कर रहे थे। रामानंद, कबीर, दादू, रैदास, रज्जब, तुकाराम, एकनाथ, शंकर देव आदि ऐसे ही संत थे। इस लिहाज से पृष्ठ संख्या 7, डॉक्टर रामविलास शर्मा का भक्ति आंदोलन को भारतीय नवजागरण का पहला सोपान कहना बिल्कुल उचित और संगत प्रतीत होता है। 19वीं शताब्दी तक आते आते पश्चिम की आधुनिकता ने धीरे धीरे पूरब को भी अपने रंग में रंगना शुरू किया। दर्शन के क्षेत्र में हीगेल, मनोविज्ञान के क्षेत्र में फ्रायड तथा विज्ञान में न्यूटन, केपलर, कापरनिकस व आइंस्टीन आदि के सिद्धांतों ने मनुष्य के विचारों को बदल कर रख दिया। कापरनिकस ने सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड के सिद्धांत को सत्यापित कर विज्ञान जगत में एक क्रांति ला दी, जिससे कापरनिकसीय क्रांति कहा गया। इसके पहले धारणा थी कि पृथ्वी स्थिर है तथा सूर्य सहित समस्त पिंड उसका चक्कर लगाते हैं। कापरनिकस ने इस धारणा को पूरी तरह से उलट दिया। कालांतर में गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार कर कापरनिकस के विचारों की पुष्टि कर दी। विज्ञान में आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की, वहीं दर्शन शास्त्र में हीगल ने निरपेक्षता के सिद्धांत को ही सब कुछ मानते हुए उसके भीतर के द्वंद्व को ही विकास का मूल कारण बताया, जिसे उलटकर समाज विज्ञान में इसका प्रयोग द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के रूप में कार्ल मार्क्स ने किया तथा ईश्वर, धर्म और अध्यात्म जैसी चीज़ों को सिरे से खारिज कर दिया। मार्क्स ने धर्म को जनता का अफीम कहा, जिसे खिलाकर उसे सदियों तक सुलाया जा सकता है। फ्रायड, एडलर और यंग जैसे मनोवैज्ञानिकों ने भी मानव मन की गोपन अरगलाएं खोल दी। वहीं दो विश्व युद्धों की विनाशकारी पृष्ठभूमि में किर्केगार्ड और शास्त्र का अस्तित्ववादी दर्शन अस्तित्व में आया, जिसका आधुनिक युग में साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। चार्ल्स डार्विन के विकासवाद ने पहले ही सृष्टि की ईश्वरवादी मान्यताओं और धार्मिक आस्थाओं को खंडित कर दिया था। डॉक्टर नगेंद्र ने आस्था के चरण में लिखा है, जैविक धरातल पर जीव विज्ञान की उद्भावनाओं के फलस्वरूप और चेतना या अंतश्चेतना के क्षेत्र में मनोविज्ञान शास्त्र के शोध परिणामों के प्रभाव से अंतर्जीवन अर्थात अनुभूत्यात्मक जीवन का स्वरूप ही बदल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 ईस्वी में हिरोशिमा और नागासाकी जापान के दो नगर मानव की क्रूरतम बर्बरता के इतिहास बन गए, और इस प्रकार के विज्ञान के वरदान के साथ अभिशाप वाली भूमिका भी मनुष्य को अब भयभीत करने लगी। विकास से विनाश तक की यात्रा तय करने के बाद वह अपने अस्तित्व को लेकर ही घबरा उठा।